الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يطهر الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس بابرکت میلاد باسعادت کے موقع پر، اور آپ لوگوں سے معذرت بھی طلب کرتے ہیں کہ راستے میں کافی رش تھا اور کسی ایک اور جگہ بھی پروگرام تھا، وہاں سے آتے آتے چلے متاثر ہو گئی. کوشش کریں گے کہ ہم بہت ہی مختصر الفاظوں میں اور جو کلیدی نکات ہے وہ آپ کے سامنے اس سیدہ قارئین کی زندگی کے متعلق آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو ہستی کا آج ہم لوگ میلاد منانے جا رہے ہیں، شاید زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں نے ان کی قدر و منزلت کو جانا ہے، اور ان کی معرفت شاید زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں نے کی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے گھر پر ملائکہ بھی جو ہے وہ اذن لے کر اس گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، بغیر اذن لیے اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کو تمام عالم کی تمام عالم کی خواتین کی سردار کہا گیا ہے، سید مسائل عالمین کہا گیا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدا بند متعال جناب ختم مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ احمد، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ عالم کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. بس اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کی خلقت کی وجہ اور یعنی آپ کے وجود کے دوپہر میں یہ کائنات اور ہم سب وجود میں آئے ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رسول خدا تو اشرف ہیں تمام مخلوقات پر، تو کیوں کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوی نہ ہوتی تو ان دو کو بھی خلق نہ کیا جاتا. اگر اس کو ہم اس طریقے سے لیں جیسے کہ روایات میں بھی ہے کہ تمام انبیاء اور تمام آئمہ جو ہیں وہ ایک صلب سے ہیں اور ایک درخت کی مانند ہے، اور اگر ان سب کو ایک درخت کی مانند دیا جائے اور سب ایک دوسرے کی شاخیں اور سہارا ہیں، تو اس درخت کی جڑیں اور اس درخت کی جو اصل اور اصول جو ہے وہ جناب سیدہ قارئین قرار پائیں گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب ام ابیہا ہے، یعنی رسول خدا آپ کو کہا کرتے تھے کہ اپنے والد کی والدہ. یہ لقب بھی شاید اسی فلسفے کی بنا پر آپ کو ام ابیہا کہا گیا ہے. آپ کی فضیلت اور منزلت کو فقط ہم یہاں سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وہی نازل ہوتی ہے رسول خدا پر کہ آپ مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ آپ رسول اللہ کو ان کے نام سے نہ پکاریں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں، ان کو ادب سے ان کا نام لیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو نام سے نہ پکارا جائے. تو اس آیت کے آنے کے بعد سب لوگ جو ہے آپ کو یا رسول اللہ کہتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا بھی جو ہے वो आपको या रसूल अल्लाह कहा करती थी। तो आपने कहा कि अरे देखो ये सारा ये जो हुक्म आया है ये अरब को बेतरबियत बदुओं के लिए आया है कि जो रसूल की कदर मंजिलत को नहीं जानते। ये हुक्म तुम्हारी जैसी बेटी के लिए नहीं आया है, इसलिए तुम जो है अगर मुझसे वालिद गिरामी कह के अगर पुकारोगी तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा नस्बत इसके कि मुझे रसूलुल्लाह कह कर पुकारो, क्योंकि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। बस ये फजीलत है जनाब सैयदा की कि रसूल खुदा भी उनको कहते हैं कि आप मुझे जो है वो वालिद गिरामी कह कर पुकारा करें। ये इन हस्तियों की मोहब्बत जो है ये बहुत बड़ी नेमत है कि जो शायद कायनात किसी को नसीब नहीं है, ये हमारे नसीब हाल हुई है। इस मोहब्बत और इस इश्क की हमें कदर व मंजिलत करनी चाहिए और ये मोहब्बत जो है हमें इस दुनिया में भी काम आएगी, हमें कब्र में भी काम आएगी और कयामत में भी काम आएगी। एक हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जनाब सलमान से फरमाया कि जो लोग भी जनाब सैयदा से मोहब्बत करते हैं कयामत वाले दिन मैं उनके साथ और जो लोग भी जनाब सैयदा से मोहब्बत करते हैं 100 मकामात पर उनको ये मोहब्बत काम आएगी और उन 100 मकामात में से आसान तरीन मकामात जो हैं वो कब्र हैं, वो सिरात हैं, वो हिसाब किताब की मंजिल है, वो मीज़ान है और वो मौत का वक्त है। बस ये वो आसान तरीन मनाजिल है, तो इसके मुश्किल तरीन मनाजिल क्या होंगे। बस हर जगह पर ये मोहब्बत जो है हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया होगी हमारे लिए। इसी तरह एक और हदीस है हमारे पांचे अम्मा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम क्या आपने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से फरमाया कि कयामत वाले दिन खुदा अपने मुताबिक फरिश्तियों से खिताब करेगा और कहेगा कि उन फरिश्तियों का की मंजिलत कदर व मंजिलत और मकाम देखो जिन्होंने उनको दोस्त रखा कि जो बीवी फातिमा को दोस्त रखा करते यानी उनको चार करते और जिन्होंने बीबी सैयदा के लिए किसी एक गरीब को खाना खिलाया है, बीबी सैयदा के सदके में किसी एक को मसलन लिबास पहनाया है, किसी प्यासे को सैराब कराया है, उनका जन्नत के खास मकाम व मंजिलत। तो ये मोहब्बत जो हमारे वालदैन हैं हमारे जिस्म के रग रग में जो है हमारे बसा दी है इसकी कदर व मंजिलत करनी चाहिए। ये कोई बेकार सी चीज़ नहीं है बल्कि बहुत ही कीमती शय है। एक हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली से फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की उम्र जो है वो हज़रत नूह की उम्र के बराबर जो है वो इबादत करे, हज़रत यानी 900 कुछ साल जो कहे गए हैं इतने साल अगर उसने इबादत की हुई हो और कोहे अहद अहद का जो पहाड़ है इतना सोना इसने राह खुदा में खर्च किया हो, 1000 मरतबा पापियादा हज अंजाम दिए हों और सफा व मरवा के दरमियान उसको नाहक कत्ल कर दिया जाए, यानी इतने सारे उसने अमाल अंजाम दिए हों लेकिन अगर उसके आमाल में तुम्हारी विलायत की मोहब्बत अभी नहीं हुई तो उसका कोई अमल भी कबूल नहीं। बस इतनी अहम है ये मोहब्बत मोहम्मद वाले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, लेकिन यहाँ मैं दो या तीन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, आपकी अपने आगाई को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए मोहब्बत जो है वो पहली बात ये है कि जबान से नहीं पता चलती, अमल से पता चलती है। मैं जो है इदा करूँ कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन जब वक्त पड़े, जब आप पर जब मुश्किल वक्त आए तब मैं आपके काम ना आ सकूँ, तो इसका मतलब है कि मैं फकत जबानी तौर पर दावा कर रहा हूँ मोहब्बत, अमली तौर पर नहीं कर रहा। बस किसी की मोहब्बत को अगर पहचानना हो तो हमें क्या करना होगा, उसके अमल में देखना होगा कि वो अमल में कितना अपनी मोहब्बत उसके आमाल से छलकती है या नहीं छलकती। बस मोहब्बतें भी शायद दो तरह की होती है, एक हकीकी मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है, और एक जो है नकली मोहब्बत होती है, सिर्फ इदा की हद तक होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बतें फकत और फकत जबान जवाब खर्च तक हो। दूसरी बात यह कि मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मोहब्बत के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। मोहब्बत फकत जो है बैठे बैठे सिर्फ इजहार मोहब्बत कर देना काफी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि हमारी तमाम जिंदगी में आइम्मा की मोहब्बत को नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी मोहब्बत मुहर्रम में तो नजर आती है, मजालिस में, नौहाखानी में, मसियाखानी में तो नजर आती है, लेकिन आम रोजमर्रा की जिंदगी में ये आइम्मा की तालीमात हमारी जिंदगी में अगर नजर नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है। कारोबार में अगर हम भूल जाते हैं आइम्मा के तर्जे तरीक़ाकार को, अगर जो है हम अपनी दोस्तियों में, अपनी दुश्मनियों में आइम्मा को अगर भूल जाते हैं तो हम सच्चे मोहब्बत करने वाले अहले बैत के नहीं हैं। बस खुलासा यह हुआ, नतीजा यह निकला कि ये मोहब्बत है तो बहुत कीमती चीज़, और इससे कीमती चीज़ शायद कायनात में कोई ना हो, लेकिन इतनी आसान नहीं है। ये मोहब्बत को हमें अपने अमल से साबित करना होगा, हमें इस मोहब्बत के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, हमें इस मोहब्बत के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसे ही सिर्फ बैठ कर इजहार मोहब्बत कर देना खुद मोहब्बत नहीं है, खुद मोहब्बत के लिए अमल करना पड़ता है, और वो अमल फकत एक जिंदगी के एक हिस्से में ना हो बल्कि तमाम पूरी जिंदगी में हो। अगर हम नौकरी करने का फैसला कर रहे हो तो वहाँ भी देखेंगे को देखेंगे आइम्मा हमसे क्या चाह रहे। अगर आइम्मा पर किसी जगह पर हम नहीं चाह रहे कि हम वहाँ पर काम करें तो हमें वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर जो है किसी से दोस्ती रखना, किसी से दुश्मनी रखना, ये भी हमारी आइम्मा की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। अब मुख्तसर से इंशाल्लाह बस एक आखिरी गुफ्तगू करके अपने आराइज को तमाम करेंगे कि हम ये देखेंगे तालीम तरबियत में जनाब सैयदा की क्या सीरत रही है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कौम को एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें तालीम में पीछे रखा जा रहा है। हमारी तरबियत जो है ये फासिद मीडिया कर रहा है। तो हमें जनाब सैयदा की सीरत में देखना चाहिए कि उनकी सीरत से हमें तालीम और तरबियत के हवाले से क्या दर्स मिलते हैं। सबसे पहला दर्स जो हमें तालीम और तरबियत के हवाले से आपने दिया है वो अमली नमूना खुद आपने पेश किया, यानी आप जो चीज़ तालीम फरमाया करती थी पहले उस पर खुद अमल करती थी। लोग लागू करना होगा। नंबर दो, आपने अपने बच्चों को सही तरबियत किया, कायनात के बेहतरीन लोग आपने अपने बच्चों को तरबियत किया कर बनाया, हसन हुसैन और जैनब जैसे लोगों को तरबियत किया आपने। तो हमें भी यानी ये एक दर्ज दिया आपने कि हमें घर से शुरू करना चाहिए। अगर हमें अपने माशरे को सही करना है तो पहले हमें अपने घर से काम को शुरू करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन हैं तो पहले हमें उनकी तरबियत से शुरू करना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे घर में असल पता नहीं है उनको कुरान पढ़ना तक नहीं आता और हम माशरे में कुरान को नाफिज करना चाह रहे हैं। बस दूसरा जो दर्स आपकी सीरत से हमें मिलता है तालीम और तरबियत में, वो ये कि हमें अपने घरों से तालीम और तरबियत को और इन बच्चों से तालीम और तरबियत को शुरू करना होगा। तीसरा जो है आपकी जिंदगी में हमें मिलता है कि आप अपने घर में तदरीस किया करती थी, लोगों को बुलाकर दर्स दिया करती थी, अहकाम का और कुरान की तफसीर का दर्स दिया करती थी। एक दफा का वाकया है कि एक खातून आपकी खिदमत में हाजिर होती है, कहती है कि मेरी वालदा जो है बहुत माजूर है, उसका एक सवाल है, वो सवाल मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। आप कहते हैं अच्छा सवाल करो, वो सवाल का जवाब जनाब सैयदा देती है। फिर वो दूसरी दफा आती कहती है उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, तो इस तरह तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 10 सवाल हो जाते हैं, जाती आती। वो पूछने सवाल करने वाले खातून खुद शर्मिंदा हो जाती है कि मैं बहुत ज्यादा माजरत खा हूँ कि मैं 10-10वीं दफा आपके पास आई हूँ और सवाल पूछ रही हूँ। तो आप उसको एक मिसाल देती हैं कि अगर एक शख्स जो है कुछ सामान जो है तुम्हारी छत तक ले जाए और उसको अगर 1,00,000 दीनार दिया जाए तो क्या इससे वो खुश होगा या नहीं होगा। 1,00,000 दीनार तो बहुत होते हैं एक सामान छत तक पहुंचाने में, क्या करें। क्या ये जिस तरीके से तुम मुझसे पूछती जा रही हो और मैं जवाब देती जा रही हूँ, मेरे सवाल में एक लाख दीनार का सवाल जो है मेरे नामे अमाल में लिखा जा रहा है, तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात। इसलिए सवाल करने से मत गुरेज करो। बस इस हौसले से हमें जो है वो लोगों की तरबियत करनी होगी और लोगों पर काम करना होगा। और शायद इसी अंतर मेहनत के नतीजे में खुदा ने आपको एक इनाम दिया है जिसको कहा जाता है सहीफ़े फातिमा। शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुनना होगा कि एक सहीफा था सहीफा फातिमा के नाम से, जो रसूल खुदा की वफात के बाद एक फरिश्ता आप पर नाजिल हुआ करता था और आपको कुछ चीज़ें बताया करता था जो उसको लिखा जाता था। शायद इमाम अली को आप कहा करते थे और इमाम अली उसको इब्ला किया करते थे। और इसका हजम जो है कुरान मजीद से, ये सब रिवायात में आया है, इसका हजम कुरान मजीद से 3 बराबर था। मसलन अगर अभी तफसीलात बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मसलन कहा गया है कि इसमें जो है वो अहकाम नहीं थे, हलाल और हराम के हुक्म नहीं थे जिस तरीके से कुरान में, बल्कि आइंदा के वाकयात थे। और इसमें यह था कि आइंदा आपकी आल पर क्या क्या मसालिम होने वाले हैं और कौन कौन लोग किस किस तरीके से आपकी आल पर जो है वो मसाइल को ढाएंगे। ये सहीफ़े फातिमा की तमाम आयमा को मुंतकिल होता रहा और कई रवायात में आया है कि इमाम हुसैन काज़िम की रवायत में भी आया है, इमाम जाफर सादिक की रवायत में भी आया है कि वो रवायात जो है वो सहीफा आप तक पहुँचता रहा। बस जब कोई शख्स खुदा के दीन को खुलूस दिल से फैलाना चाहे और फिर रात रात भर उसके लिए इबादत भी करे, आपने अपने घर में एक मेहराब इबादत बनाई हुई थी जिसमें आप इबादत किया करते थे और इतनी इबादत किया करते थे कि आपके पैरों पर वरक आ जाता था, तो अगर हमें भी इस माशरे को सही हुदूद पर तरबियत देना है तो हमें पहले खुद अमल करना होगा, अपने اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا اور عبادت میں بھی ہمیں آگے آگے رہنا ہوگا، تب جا کے ہم کامیابی سے اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دعا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو جناب سیدہ سے نقل کی گئی ہے اور حضرت سلمان فارسی نے روایت کی ہے، کہ اس دعا کو جناب سیدہ نے بتایا تھا اور میں نے اس دعا کو 1000 لوگوں کو نقل کیا اور ان لوگوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے
الحمد للہ
بالعز
مسؤول
وبالفخر
مشهور
وعلى السراء
والذراء
مشكور
وصلى
الله
على
سيدنا
محمد
وآله
الطاهرين
محمد وآل محمد صلوات
کچھ بات ہونا ابھی ایک ہے